लघु वासुदेव मननम के माध्यम से जैसा ये प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन जहां पर अध्यात्म की चर्चा के लिए हम लोग प्रतिदिन प्रातःकाल ठीक 7:30 बजे से प्रारंभ कर देते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे ब्रह्म विद्या की चर्चा के लिए उपस्थित होते हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन को सफल बनाने का उत्तम तरीका यही है। जिस क्रम से वर्णन चल रहा है, संसार के समस्त प्राणी जो दुखों से छूटना चाहते हैं लेकिन छूटने का उपाय क्या है, तो वह एकमात्र ब्रह्म विद्या। सबसे मूल कारण बता दिया, अज्ञान को। अज्ञान के भी दो जो शक्ति है, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति। विक्षेप का कार्य जिसमें पंच तन्मात्रा आदि, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, समष्टि, व्यष्टि, ईश्वर, जीव, ये सब के सब विक्षेप शक्ति के कार्य हैं। यहां तक विचार हुआ। उसी अज्ञान के जो आवरण शक्ति है उसका क्या स्वरूप है, ये बात वासुदेव यति लघु वासुदेव मननन के अंतर्गत, मनन के अंतर्गत जो बता रहे हैं। अब आवरण शक्ति का जो कार्य है, बहुत अच्छी बात कही शुरू में, कहते हैं कि ईश्वरम आत्मज्ञानिनम च विहाय अन्येषां सर्वेषां जीवानां पंचकोशानां आत्मनश्च भेदम आवरण शक्ति अंधकार इव आवृणोति। ये जो आवरण शक्ति का प्रभाव, आवरण शक्ति का जो कार्य है, ये किसके ऊपर अपना प्रभाव डालता है, तो कह दिया ईश्वरम आत्मज्ञानिनम च विहाय। ईश्वर को छोड़कर और आत्मज्ञानी को छोड़कर बाकी सर्वेषाम जीवानाम, समस्त जीवों को पंचकोश का आत्मा के साथ भेद है। आत्मा और पंचकोश का जो पृथक भाव है, अलग अलग दोनों हैं, इस भेद को नहीं जान पाते हैं वे लोग जो ईश्वर और आत्मज्ञानी को छोड़कर जितने भी लोग हैं, उन सब की ये समस्या है। कहां पर समस्या आई? पांच कोशों का आत्मा के साथ जो भेद है, इस भेद को अंधकार की तरह आवृत कर दिया है, ढक दिया है जिसने, यही है आवरण शक्ति का स्वरूप। जैसे ब्रह्मसूत्र में आता है, भेदाग्रह निबंधनो भ्रम, आत्मा और अनात्मा का जो भेद है इसका ग्रहण न होना ही भ्रम है। आत्मा और अनात्मा का जो भेद है इसका ग्रहण न होना, अर्थात विवेक न होना, इसी को भ्रम बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से पांच कोश रूपी अनात्मा के साथ विशुद्ध आत्मा का जो भेद है, इसको न जानना, यही आवरण शक्ति का कार्य है। बात वही है। इव आवृणोति, जैसे अंधकार किसी वस्तु को ढक देता है, हमें अंधकार में पदार्थ दिखाई नहीं देते, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी पंचकोशों का आत्मा के साथ जो भेद है इसका भान नहीं हो रहा है। वह आवरण भी दो प्रकार का है, आवरणं च द्विविधम्, असत्वावरणम अभानावरणम च इति। एक असत्व आवरण और दूसरा अभान आवरण। भान मतलब जानना और अभान मतलब नहीं जानना। असत्व मतलब नहीं होना, वस्तु नास्ति, वस्तु नहीं है, इसको बोलते हैं असत्व आवरण। और वस्तु न भाति इसका नाम है अभान आवरण। ये जो वस्तु नास्ति इति व्यवहार कारणम असत्वावरणम और वस्तु न भाति इति व्यवहार कारणम अभानावरणम, अभान आवरण क्या है और असत्व आवरण क्या है? कह दिया आवरण शक्ति कार्यम एव संसार वृक्षस्य मूलम। विक्षेप शक्ति के द्वारा, विक्षेप शक्ति का जो कार्य है वो मोक्ष सिद्धि के हेतु है, लेकिन आवरण शक्ति का जो कार्य है वही संसार वृक्ष का मूल कारण है। जो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वस्तु नहीं है और वस्तु हमें भात नहीं हो रही है, प्रतीत नहीं हो रही है, इसी वजह से हम लोग इस संसार में आए हुए हैं। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी सब उत्पन्न हुए, जो विक्षेप शक्ति का कार्य है, इससे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी कहां हो रही है कि ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म हमें ज्ञात नहीं हो रहा है, इसी वजह से बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर चल रहा है। संसार तो अनादि प्रवाह है, जब से बना चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी ऐसा कहते हैं, जिसके द्वारा ये पुरानी प्रवृत्ति चली हुई है। हम लोग जो खाते पीते हैं कौन सी चीज खाते हैं, नई चीज की पुरानी चीज? पुरानी चीज तो खाते हैं, और क्या है, बस रिसाइकेबल वाला सिस्टम है ना। तो अभी तो सरकार ने रिसाइकलिंग सिस्टम किया, ईश्वर ने तो पहले से बना रखा है। जल आकाश वायु तेज जल पृथ्वी जो एक बार सृष्टि हो गई उसी के माध्यम से बार बार चल रहा है। तो एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये जो चक्र चला हुआ चक्का, अब लोगों को लगता है नई चीज आ गई, नया हो गया, कुछ भी नहीं है ऐसा। खाने पीने की चीज, पहनने की चीज भी एक्सपायरी डेट वाले होते हैं और उसको उपभोक्ता जो भोग करने वाला वो भी एक्सपायरी डेट वाला है। अब हम लोग हो गए 100 साल, हमारी वैलिडिटी है, कोई गारंटी नहीं है, बीच में ही माल जा सकता है, लेकिन बाकी वस्तुओं को बोलते हैं 6 महीने तक टिकेगी, 1 साल, 3 साल, 5 साल, और उसका उपभोक्ता जो हम लोग हैं, हमारा भी अपना एक्सपायर डेट है, निश्चित है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बर्थडे और एक्सपायर डेट हो गए, एक्सपायर हो गए। आवरण शक्ति कार्यम एव संसार वृक्षस्य मूलम, आवरण शक्ति ही संसार वृक्ष का मूल है, न विक्षेप शक्ति कार्यम। विक्षेप शक्ति का कार्य संसार वृक्ष का मूल नहीं है, बल्कि आवरण शक्ति का कार्य संसार वृक्ष का मूल है। गीता के 15वें अध्याय पढ़ेंगे, वहां तो ये बात नहीं आई है। वहां तो भगवान अर्जुन को पुरुषोत्तम क्या चीज है इसके बारे में बताने लगे, तो संसार वृक्ष का वर्णन प्रारंभ किया। लेकिन लघु वासुदेव मरणम पढ़ने के बाद पता चलता है कि इस संसार वृक्ष को प्राप्त होता कौन है, जिसका अभी आवरण शक्ति का कार्य नष्ट नहीं हुआ है। और आवरण शक्ति का स्वरूप क्या है? वस्तु नास्ति, वस्तु न भाति, ये दो बातें बस, यही से सारे अनर्थ परंपरा शुरू होती है। और विक्षेप शक्ति का कार्य जो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी है, ये सब मोक्ष सिद्धि के हेतु हैं। मोक्ष प्राप्त करना है तो विक्षेप शक्ति के कार्य का चिंतन किया जाए, ईश्वर कौन है, जीव कौन है, जगत कौन है, पठन पाठन करना, ये सब विक्षेप शक्ति में ही आ जाते हैं सब कुछ, लेकिन ये मोक्ष सिद्धि के हेतु है। और आवरण शक्ति संसार वृक्ष के मूल है। दोनों अज्ञान की ही शक्ति है, लेकिन दोनों के फल में कितना भेद है ये यहां पर सुस्पष्ट किया। अब बता रहे हैं कि द्विविधम अपि आवरणम, जो आवरण का भी दो भेद किया, असत्व आवरण और अभान आवरण, ये दोनों ही तत्व ज्ञानेन विनाश्यम, इन दोनों का विनाश कब होगा? तत्व ज्ञान के द्वारा ही इसका विनाश होगा, नष्ट होगा। दोनों आवरण, असत्व आवरण और अभान आवरण। तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त हो, उसका क्या स्वरूप है, जिज्ञासुओं की वृत्तियां कितने प्रकार की होती है, पंचदशी भी आप लोग श्रवण कर ही रहे हैं, उस बात को भी यहां थोड़ा बताएंगे। तत्व ज्ञान किसको बोलते हैं? तो कहा परोक्ष ज्ञानम अपरोक्ष ज्ञानम च इति द्विविधम तत्व ज्ञानम। तत्व ज्ञान भी दो है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान हो गया श्रवण, और अपरोक्ष ज्ञान है मनन और निधिध्यासन। परोक्ष ज्ञान रूपी जो श्रवण है, इससे आपाततः हमें ये ज्ञान होता है कि वस्तु है, और अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा वस्तु भाति ये हो जाता है। जो पहले वस्तु नास्ति और वस्तु न भाति ये जो हो रहा था ना, अब श्रवण करते ही वस्तु अस्ति ये तो हो गया श्रवण करने का फल, और वस्तु भाति ये होगा अपरोक्ष ज्ञान का फल। तो ये जो तत्व ज्ञान दो प्रकार का, परोक्ष और अपरोक्ष, तत्र गुरु मुखाद वेदांत जन्यम ज्ञानम परोक्ष ज्ञानम। परोक्ष ज्ञान किसको बोलते हैं? गुरु के मुख से वेदांत शास्त्र के द्वारा उत्पन्न, जो हमारे श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से मन में वृत्ति बनती है, इसका नाम है परोक्ष ज्ञान। इसी को बोलते हैं इदम एव श्रवणम, इसी का नाम श्रवण है। इसके द्वारा क्या होगा? तो अनेना वस्तु नास्ति, जो वस्तु नास्ति अभी तक हम बोल रहे थे, इत्येवम रूपम असत्व आवरणम नश्यति। वस्तु नास्ति जो असत्व आवरण शक्ति है, इसका क्या होगा? विनाश हो जाएगा श्रवण करते ही। यहां जब से आप लोग आने लगे स्वाध्याय प्रवचन में, सबको इस बात का पक्का निश्चय हो चुका है कि परमात्मा है। परमात्मा का जो स्वरूप है, जब जगत का विचार चलता है, जैसे अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते बालानाम उपकाराय तत्वज्ञ कल्पित क्रम, एक तो ये श्लोक है बहुत प्रसिद्ध है, और दूसरा आता है अस्ति भाति प्रियम चेति नाम रूपेति पंचकम। परमात्मा के ये सब रूप है, लेकिन इसमें दो रूप तो हैं जगत का और तीन रूप है परमार्थ का। अस्ति भाति प्रियम चेति नाम रूप इति पंचकम, ये जो पांच हैं, अस्ति है, भाति ज्ञात होता है, और प्रिय जो आनंद स्वरूप है। अस्ति भाति प्रिय मतलब सच्चिदानंद, और नाम और रूप ये जगत दिखाई दे रहा है, जिसमें पहले तो रूप में आग्रह रहता है और रूप भी चला जाता है, तो फिर नाम का आग्रह रहता है। हम लोग सबको मालूम है एक दिन जाने वाले हैं, लेकिन चाहते क्या है कि जाने के बाद भी हमारा नाम रहे, चलता रहे। अब वो नाम कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी? रामकृष्ण का नाम चल रहा है, उनके पिताजी का नाम कितने लोग जानते हैं? जितने लोग भागवत रामायण सुनते हैं उतने लोगों को मालूम है। चलो थोड़ा क्लास आदि में पढ़ा भी देते होंगे, राम के पिता दशरथ थे, कृष्ण के पिता वसुदेव जी थे, लेकिन कृष्ण के दादाजी का नाम क्या था? आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा इसके ऊपर। करना क्या है, कोई उनका बर्थडे तो मनाना है नहीं, लेकिन हम ये बात करते हैं कि जिन कृष्ण और राम के हम दिन रात नाम लेते हैं, ऐसे राम के दादा और कृष्ण के दादाजी से भी कोई वास्ता हम लोग नहीं रखना चाहते, अर्थात उनके नाम विस्मृत हो चुका है लगभग सबको। जिस समय वो रहे होंगे उस समय वो भी अपने आप में कुछ थे, आज हम लोग भी इसी तरह से हैं। अपने आप को क्या मानते हैं? हम भी कोई चीज हैं। कल आप बोल रहे थे ना, वो क्या होता है जलने के बाद राख का ढेरी तो आता है हाथ में, इतने से ले जाकर के हरिद्वार में गंगा जी में डालने जाते हैं। क्या लेके आए? बोले फूल डालने आया। कौन सा फूल था जो पहले फूला हुआ था ना, वही फूल है, और कौन सा फूल है, हो गया हाँ फूला हुआ फूल, यही कहना पड़ेगा। मैं भी कोई चीज हूं, तो ये हमारा स्वरूप है, मतलब जिस शरीर को लेकर अभिमान कर रहे हैं, और यही अभिमान जन्य जो है दुख अनर्थ की परंपरा बनी हुई है। आत्मा के दुख का कारण शरीर, शरीर की प्राप्ति कर्मों से, कर्म की उत्पत्ति राग से, राग होते हैं अभिमान से, अभिमान होता है अविवेक से, और अविवेक होता है अज्ञान से। जिस अज्ञान का इतना बड़ा स्वरूप बता रहे हैं यहां पर, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, फिर आवरण शक्ति के भी दो भेद, असत्व आवरण, अभान आवरण, फिर इसको नष्ट करना है वो तत्व ज्ञान से ही होगा। तत्व ज्ञान भी दो प्रकार का, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, यहां तक विचार हुआ। इदम एव श्रवणम अनेन वस्तु नास्ति इत्येवम्। जब दशमस्तमसी का उपदेश दिया गया है जहां पर, वहां पर भी यही बात तो है। दस आदमी थे, नहा रहे थे, एक डूब गया, डूबा था कि नहीं डूबा था। आगे विवर्तवाद और परिणामवाद की बात आएगी, आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं तो ध्यान में रहेगा। ये पंक्ति है, लिखने वाले लिख सकते हैं, अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदाहरितः। विवर्त किसका नाम है? अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदाहरितः। विवर्त बोलते हैं अपने स्वरूप को बदले बिना उसी में अन्यथा प्रतीति हो जाए, इसका नाम है विवर्त। अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदाहरितः। सतत्वतो अन्यथा प्रथा, अतत्व के जगह स लगा दो, सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकार इति उदाहरितः। परिणामवादी जो सांख्य लोग हैं, परिणामवाद और विवर्तवाद में अंतर क्या है? वे लोग कार्य को भी सत्य ही बताते हैं, और हमारे यहां कार्य को केवल कहने भर के लिए होता है, वो वास्तविक सत्यता नहीं होती, जिसका नाम है वाचारम्भणम। वाचारम्भणम का मतलब होता है कहने भर के लिए, और सांख्यवादी बोलते हैं नहीं सत्य है। हम लोग कहते हैं सत्य तो है लेकिन कहने भर के लिए सत्य है, वास्तविकता नहीं है। उनके वहां कारण भी जो प्रकृति है वो कार्य के रूप में परिणत हो जाती है। जो दूध का दही हुआ तो दूध ही बदल गया दही के रूप में, और विवर्त में रस्सी बदले बिना ही सांप के रूप में दिखाई देने लगी। तो वहां पर है कि अपने स्वरूप को छोड़े बिना जिसमें अन्यथा प्रतीति हो, इसका नाम है विवर्त। और जहां पर स्वरूप बदल जाए उसमें जो अन्यथा प्रतीति है, इसका नाम है परिणाम, इसी को बोलते हैं विकार। तो अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदाहरितः, सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकार इति उदाहरितः। ये दो जो परिणामवाद और विवर्तवाद को लेकर के जो सांख्यवादियों के साथ अद्वैत वेदांतियों का जो भेद है यहीं पर। तो ये जो जगत दिखाई दे रहा है क्या है? ये विवर्तवाद है। परमात्मा का जो स्वरूप है वो यथावत ही है। अधिष्ठान का ज्ञान हमें नहीं हुआ और अध्यस्त की तरफ सबकी निगाह पड़ गई। अध्यस्त मतलब अध्यारोप और अधिष्ठान मतलब अपवाद, और क्या है। घुमा फिरा के बात वहीं आएगी, थोड़ा सा कहने का तरीका अपना अपना है। तो जब वह दसवां चला गया, डूब गया, ये तो उन लोगों की अपनी गिनती थी, और जैसे उन्होंने देखा आप्त पुरुष आए, भाई क्या है तुम लोग क्यों रो रहे हो, रोने का क्या कारण है? बोले हम लोग दस लोग थे और स्नान करके आगे जाने का विचार था, स्नान के बाद जब हम लोगों ने गिनती की तो एक डूब गया, एक जा चुका है, इसलिए हम लोग रो रहे हैं। बोले कितने लोग थे? बोले दस लोग। गिन लिया? बोले हां। तो उन्होंने खड़े खड़े देखा दस के दस तो ये है ही, फिर उन्होंने गिना कैसे, तो उन्होंने स्वयं कहा भाई एक बार हमको गिन के दिखाओ। जब उन्होंने गिनने का तरीका उनका देखा, वो समझ गए इनकी गलती कहां हो रही है। उससे पहले दस के दस को पक्का हो चुका था कि हम लोगों को गिनना ठीक आता है। जैसे यहां भी हम लोग यही बोलते ना, तुम्हें नहीं आता है, तो वो बोलते तुम्हें नहीं आता है, अब किसको आता है पता क्या है। इसलिए तो कहा गुरु मुखाद वेदांत जन्यम ज्ञानम, यही श्रवण है। अपने आप शास्त्र पढ़ेंगे ना तो कहीं के बाद कहीं लेकर के जोड़ेंगे तो अल्प विद्या भयंकरी हो जाती है, उससे कल्याण तो नहीं होगा और भटक जाएंगे, और यही आजकल हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम लोगों ने गिन लिया, बोले हां। तो उन्होंने पक्का करने के लिए एक बार स्वयं कहा कि हमको गिन के दिखाओ। जब गिन के दिखाया तब भी उनको अपनी गलती समझ में नहीं आई, और उन्होंने कह दिया कि दसवां यही है। अभी तक वो लोग क्या बोल रहे हैं कि दसवां नहीं है, वस्तु नास्ति, और वो क्या कह रहे हैं कि दसवां यही है, वस्तु अस्ति। जो असत्व आवरण था वो भंग हो गया श्रवण करती। अब उन लोगों के क्या बोलते हैं, जान में जान आ गई। जैसे कहा दसवां यही है तो उनको ऐसा लगा कि कहीं से लाके तो नहीं रख दिया, सीधे बोल रहे दसवां यही है, लेकिन अभी कौन है ये नहीं मालूम है। जब फिर कहा अब दोबारा गिनो, दोबारा जब गिना तो वही एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तो कहते दसमस्तमसी, दसवां तू है। ये हो गया वस्तु भाति, वस्तु नास्ति की जगह हो गया वस्तु अस्ति, और वस्तु न भाति की जगह हो गया वस्तु भाति, वह मैं ही हूं, ये पता चल गया। इसी को परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान दो नाम दे दिया। परोक्ष ज्ञान ही अपरोक्ष ज्ञान होता है, और ज्ञान एक ही है, उपचार के लिए दो तरह का नाम रख दिया। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू, उधर वाला सत्यमेव जयते पढ़ो वो भी एक रुपया है, और जिधर एक रुपया लिखा है वो भी एक रुपया ही है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो रूपम असत्वावरणम नश्यति तदा वस्तु अस्ति इति व्यवह्रियते, ये श्रवण के द्वारा मालूम पड़ जाता है। श्रवण से संशय जो था वो मिट गया, मनन के द्वारा असंभावना की निवृत्ति होती है, और निधिध्यासन के द्वारा विपरीत भावना की निवृत्ति होती है। ये याद रखना है, श्रवण का फल है संशय की निवृत्ति, मनन का फल है असंभावना की निवृत्ति, और निधिध्यासन का फल है विपरीत भावना की निवृत्ति। तो संशय भावना, असंभावना और विपरीत भावना, ये श्रवण मनन निधिध्यासन क्यों करना चाहिए, तो इसके लिए आवश्यकता है। बोले जब तीनों भाव की निवृत्ति हो जाती है, संशय भी हट गया, असंभावना भी हट गई, विपरीत भावना भी चली गई, तो दृष्टांत दे रहे हैं कि देहात्म ज्ञान वर ब्रह्मात्म ज्ञानम। जो अभी तक देह में आत्मा की प्रतीति हो रही थी, जो देह हमें आत्मा की तरह लग रहा था, उसी आत्मज्ञान की तरह हमें ब्रह्मात्म ज्ञान हो जाता है। ये दृष्टांत है यहां पर, जबकि देह आत्मा तो है नहीं, ये तो सबको मालूम है, लेकिन देह को आत्मा मानने में जैसे हमें हिचकिचाहट नहीं हो रही थी, हमारा शरीर ही हमें आत्मा की तरह जैसे लग रहा था, उसी प्रकार से उसको ब्रह्मात्म ज्ञान हो जाता है। देहात्म ज्ञानवद ब्रह्मात्म ज्ञानम जायमानम अपरोक्ष ज्ञानम, इसी का नाम है अपरोक्ष ज्ञान। जब श्रवण मनन और निधिध्यासन पूर्वक निश्चय हो जाए, अब यहां हम लोग जितने बैठे हैं, न तो ये पूछना चाहिए न बोलना चाहिए, जब आप लोग घर से चल के यहां आ जाते हो, इस समय यहां बैठे हो, अपने आप को किस रूप में देख रहे हो? कह रहे यार कोई आपको कुछ नहीं करेगा, एकदम बेधड़क होके बोलो, सत्संगी, श्रोता, आत्मज्ञानी, आत्मस्वरूप हो गए, अभी मुक्त तो नहीं हुए ना, अभी तो उपाधिक भेद रहेगा ना, शरीर में प्रारब्ध बाकी है अभी, ये तो भुगतना है। ज्ञानी की दृष्टि से तो प्रारब्ध भी समाप्त हो जाता है। ये आप पढ़ोगे ना, तत्वबोध पढ़े हो, तत्वबोध उसमें वेदांत के कोई ग्रंथ छोड़ना मत, जब तक सांस चले तब तक पढ़ते रहो। और कभी ये मत सोचना कि ये पढ़ लिया वो रह गया, ऐसा नहीं, जो पढ़े उसको बार बार पढ़ो। कोई कोई बात ऐसी रहती है जो पढ़ तो लेते हो दिमाग में नहीं उतरती, और जब बार बार श्रवण करेंगे तो फिर वो बात बैठ जाती है। तो यहां पर संशय तो नहीं है किसी को, श्रवण करने के बाद क्या मालूम पड़ा कि हम परमात्मा के ही अंश हैं। अब जो असंभावना, असंभावना का मतलब क्या, असंभव, इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबिलिटी असंभावना क्या मिट गई कि मैं ब्रह्म हो सकता हूं या नहीं, हो ही सकता हूं। बार बार मनन करेंगे तब ये असंभावना रूपी जो दोष है इसकी निवृत्ति होगी। और विपरीत भावना क्या है, सजातीय वृत्ति का प्रवाह बनाए रखो और विजातीय वृत्ति का तिरस्कार करो। आत्मा रूपी, बार बार आत्मा की वृत्ति बने, इसको बोलते सजातीय वृत्ति का प्रवाह, और जब जब अनात्मा की वृत्ति बने तो इसको बोलते विजातीय वृत्ति, विपरीत वृत्ति। विजातीय मतलब विपरीत जाति, सजातीय हो गया अपना आत्मा और विजातीय हो गए अनात्मा। तो सजातीय वृत्ति का प्रवाह बनाए रखना और विजातीय वृत्ति का तिरस्कार करना, इसका नाम है निरिध्यासन, और इसी से विपरीत भावना की निवृत्ति होती है। तो संशय, असंभावना, विपरीत भावना, श्रवण मनन और निरिध्यासन का जो ये फल है, इसके द्वारा देहात्म ज्ञानवत, जैसे देह में आत्मज्ञान होता है, अर्थात देह को जैसे हम आत्मा मानते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मात्म ज्ञानम, ब्रह्म ही आत्मा है ये निश्चय होने लगता है। शरीर को अभी तक तो हम इसलिए आत्मा मान रहे थे क्योंकि ब्रह्म का हमें ज्ञान नहीं था, अब पता चला तो उसमें अब धीरे धीरे दृढ़ीकरण होने लगा और अनात्मा का अपने आप तिरस्कार होने लग जाएगा। इसके द्वारा अपरोक्ष ज्ञान से ही हमें अनेन वस्तु न भाति, जो हो रहा था अभी तक, इति व्यवहार हेतु अभानावरणम नश्यति, अभान आवरण और असत्व आवरण की निवृत्ति का साधन बता दिया। तत्व ज्ञान के द्वारा ये नष्ट होता है, परोक्ष ज्ञान से अर्थात श्रवण से असत्व आवरण भंग हुआ और अपरोक्ष ज्ञान से अभान आवरण भंग हुआ, नष्ट हुआ। एवं परोक्ष ज्ञानेन च ब्रह्म नास्ति और न भाति इति व्यवहार हेतु आवरण द्वयम् अपि नश्यति। परोक्ष ज्ञान से तो केवल असत्व आवरण भंग होता है, लेकिन परोक्ष और अपरोक्ष जब दोनों मिल जाते हैं फिर दोनों प्रकार के आवरण नष्ट हो जाते हैं, अर्थात असत्व आवरण और अभान आवरण। इसके नष्ट होने का परिणाम क्या है, फल क्या है, तो आचार्य बोलते हैं तदा अनर्थ निवृत्ति ही आनंद अवाप्तिश्च भवतः। अब जो है अनर्थ की निवृत्ति हो गई और आनंद की प्राप्ति हो गई, इसी को बोलते हैं आत्मानंद की प्राप्ति, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। ऐसी सात अवस्थाएं जिज्ञासुओं में देखी जाती है। जिज्ञासुओं की कितनी अवस्था है, सात अवस्थाएं, इसका यहां नाम गिरा दिया है, जबकि यह है पंचदशी का और तृतीय द्वीप प्रकरण आप लोग श्रवण कर ही रहे, उसमें आता है अज्ञानम आवृति तदवद विक्षेपश्च परोक्षधि अपरोक्षमति शोकहति तृप्तिर निरंकुशा, निरंकुशा तृप्ति, ये सातवीं अवस्था है। पहला नाम बताया अज्ञानम, पहली वृत्ति क्या है? अज्ञान की वृत्ति। और अज्ञान के ही जो दो शक्ति है, विक्षेप और आवरण, कितने हो गए? तीन। विक्षेप और परोक्ष ही, परोक्ष ज्ञान, चार हो गए। अज्ञान, विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति और परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, पांच हो गए। और शोक हती, शोक हती, शोक का नष्ट होना। और सातवां हो गया निरंकुशा तृप्ति। अज्ञान की जो दो शक्ति है, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति, जिसका अभी आपने श्रवण किया, जिसको सुना। परोक्ष ज्ञान हो गया श्रवण, गुरु मुख से सुनना। और अपरोक्ष ज्ञान हो गया मनन और निधिध्यासन से होने वाली जो वृत्ति बनेगी, इसको बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान। और शोक निवृत्ति का मतलब है मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति। शोक निवृत्ति का मतलब मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति। जब तक मिथ्या वस्तु का ज्ञान रहेगा, अर्थात वही जब तक हमें सत्य लगते हैं, तब तक शोक का अंबार लगा रहता है, तब तक वो नष्ट नहीं होता। तो शोक हती का मतलब है मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति। और सातवां जो निरंकुशा तृप्ति बताया, यह है निहसीम आनंद की प्राप्ति। अभी जो हम लोगों को आनंद मिलता भी है तो क्या है? ससीम, सीमा सहित, सीमाओं में रह करके हम आनंद को प्राप्त करते हैं। अपने परिवार है, सब ठीक ठाक है, आहा बड़ा आनंद है, लेकिन कोई बात आ गई तो वहां पर फिर, यहां जो श्रवण किए होंगे ना, अध्यात्म ज्ञान यही काम में आता है। चलती का नाम गाड़ी है, जब तक सब ठीक ठाक है, शरीर ठीक है, घर में वातावरण ठीक है, व्यापार धंधा ठीक चल रहा है, हाँ कोई बांधो नहीं। लेकिन बांधो कब होता है? हाँ बांधो, बांधो, हाँ तो वही रह, कोई बांधो नहीं और बांधो बांधो छे, बांधो नहीं, बस सारी समस्या की जड़ आ जाती है। तो वेदांत की परीक्षा अभी नहीं है। ये जो जीवन मुक्त किसको बोलते हैं, ये पहले वर्णक में बता दिया है, इसका उपसंहार अब होने जा रहा है। जीवन मुक्त का अनुभव करना, जीवन मुक्त रहना, जीते हुए मुक्ति का अनुभव करना, जड़ भरत आदि जी की जैसी स्थिति थी उनकी, ऐसा होना। एक जगह प्रसंग आया है, कहां का है मालूम नहीं, बोले भगवान के माया को पहचानना इतना आसान नहीं है। जब हम किसी के बारे में बोलते हैं ना, वो दम्भी है, कपटी है, ढोंगी है। दम्भी कौन है? जिसके अंदर दम्भ है, यही हुआ ना। दम्भी मतलब पाखंडी, दभनोति हिनस्ति इति दम्भ, ऐसा अर्थ किया है। अदम्भित्वम अमानित्वम अदम्भित्वम 13वें अध्याय गीता में भी आया है। तो जब आप किसी को बोलते हैं दम्भी है, कपटी है, कल महाराज जी अखंडानंद जी महाराज के प्रवचन में सुन रहे थे, अंतिम अंतिम में क्या बोल रहे थे ना, हंसा रहे थे कि लोग हमको देख रहे हैं। जब आप बोलते हो तो देखने वाले को आपने भी देखा, तभी तो आपको देख रहा, आपको मालूम पड़ा। अपनी आंख बंद कर लो, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, क्या मतलब है? अरे तुम सोए नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम भी तो नहीं सोए। जब उसके नहीं सोने को हमने देखा, तो इसका मतलब मैं भी जग ही रहा था। गलती यहीं पर होती है। तो जब वो दम्भी है, पाखंडी है, कपटी है बोलते हैं, उसके अंदर होने वाले दम्भ, उसके अंदर होने वाले कपट, उसकी वृत्ति हमारे अंदर आई कि नहीं आई? तो हम भी दम्भी और कपटी हुए कि नहीं हुए? सच बोलना आप। दूसरे के दोष को बताने जब जाओगे तो वह दोष का दोषी स्वयं हम बनने लगते हैं। और यही भगवान की माया है। भगवान की माया को इतने जल्दी से पहचानना बहुत मुश्किल है। बड़े आसानी से बोल देते हैं वो दम्भी है, कपटी है, वो है कि नहीं वो तो भगवान जाने, लेकिन उतनी देर के लिए जो वृत्ति हमारे अंदर बनी तत् दोष से, उस दोष से संबंधित हम हुए कि नहीं हुए। इसलिए आत्मचर्चा करने के सिवाय अनात्मचर्चा जब जब होगी यही भगवान की माया है, और जितने जितने आत्मचर्चा करोगे उतने उतने माया से परे होने की कोशिश मानी जाएगी, यही एक अपने आप में प्रयास होगा। बहुत बड़ी बात है, सोचना विचार करो ना। इसलिए यहां तक स्थिति कही है कि कोई कुछ भी बोले, गाली दे, चुप रहो, सांस ही मत लो, और उस समय आपकी वृत्ति क्या बनती है तब पता चलता है कि मैं जीवन मुक्त हूं या नहीं। अभी तो जरा जरा से बात में खुश हो जाते हैं, जरा जरा से बात में मुंह बना लेते हैं। इतना आसान है क्या ब्रह्मज्ञान होना, उस वृत्ति को धारण करना? ये तो अभ्यास करना पड़ेगा। कभी अपने शीशा के सामने खड़े होकर के अपने आप को कहो ना, मैं कितना बेकार हूं। हमेशा हम शीशा के सामने खड़े होते ही अपने को अच्छा मानने के लिए, कोई ये मान के नहीं खड़ा होता कि आज मैं शीशा के सामने खड़े होकर अपने आप को दुनिया का सबसे खराब व्यक्ति कहूंगा, ऐसा कभी आता है मन में? हमेशा हम सोचते हैं कि हम ठीक है और बाकी सब बेकार हैं। तो ये सात प्रकार के जो वृत्तियां हैं पंचदशी के आधार पर आचार्य ने यहां उदाहरण के रूप में गिना दिया। एवं आकाशवद निर्मले चैतन्य वस्तुनि, आकाश की तरह जो चेतन परमात्मा अत्यंत निर्मल है, मलों से रहित है, ऐसे निर्मल चैतन्य वस्तु के अंदर अनेक प्रकार के जो अनात्म वस्तुओं की कल्पना कर ली हम लोगों ने, मिथ्या भूत प्रपंच कल्पनम, इसी का नाम है अध्यारूप। आकाश में जैसे हम लोग बोलते हैं बादल है आदि आदि, ये जैसे उन अज्ञ बालकों के द्वारा आकाश में अन्य वस्तुओं की कल्पना की जाती है, वैसे ही शुद्ध चैतन्य जो आकाश की तरह है उसमें अनात्म वस्तुओं का हम लोग आरोपण करते हैं, इसी को बोलते हैं अध्यारूप। अब अपवाद जो है बहुत आसान है। अपवाद का स्वरूप क्या है तो कह दिया, कारण व्यतिरेकेण कार्यम नास्ति, यह है अपवाद का लक्षण। यह याद रखना है तो उन्हें कर सकते हैं, कारण व्यतिरेकेण कार्यम नास्ति, अर्थात कारण के अतिरिक्त कार्य की अपनी कोई खास सत्ता नहीं है। रस्सी में सांप जो दिख रहा है ना, रस्सी के सत्ता से ही सांप की सत्ता है, सांप की अपनी कोई सत्ता नहीं है। जितनी लंबी रस्सी होगी उतना ही लंबा सांप दिखेगा, मोटी रस्सी है तो मोटा सांप दिखेगा, पतली रस्सी है तो पतला सांप दिखेगा, और हो ना हो यदि काली रस्सी हो तो कोबरा सांप दिखेगा, ये भी तो हो सकता है, और सफेद रस्सी होगी तो दूसरा सांप दिखेगा। सांप का ज्ञान भी तो होना चाहिए, सामान्य सांप को तो सबको भ्रम हो जाता है, लेकिन रस्सी यदि रंग बिरंगे होंगे तो जिसने सांप विद्या का अध्ययन किया होगा कि सांप की कितनी प्रजातियां होती है, तो उसको जब जब जैसी जैसी रस्सी दिखेगी उतने उतने प्रकार के सांप भी दिखाई देंगे, ये पक्का है। पतला धागा दिखाई देगा तो केंचुआ दिखाई देगा उसको, उसमें सांप नहीं दिखेगा, और भी कलर वाला होना चाहिए। तो अधिष्ठान के अनुरूप ही अध्यस्त हमें प्रतीत होते हैं। इतना बड़ा जो ये जगत है, इसका मतलब हुआ कि इतने बड़े जगत को जो हम देख रहे हैं तो इसको बनाने वाला इससे तो बड़ा है ही, ये पक्का हो गया। इसे तो कह दिया विक्षेप शक्ति का जो कार्य है वो मोक्ष सिद्धि का हेतु है, विक्षेप कार्य हुआ नहीं ये सब, और आवरण शक्ति का जो कार्य है वो संसार वृक्ष का मूल है। इस बात को भी ध्यान में रखना, पकड़ के बहुत काम में आएगा आगे जाके। तो कारण व्यतिरेकेण कार्यम नास्ति, कारण के अतिरिक्त कार्य की अपनी कोई खास सत्ता नहीं है, ये अपवाद का स्वरूप बताया। दृष्टांत दिया कि सुक्तिकायाम रजतवत, सीपी में चांदी की तरह और रस्सी में सांप की तरह, रज्जौ सर्पवच्च। ब्रह्मणि प्रपंचो नास्ति, ब्रह्म में प्रपंच नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, है। तो जब प्रपंच है तो इसका नाम हो गया अध्यारूप, और जब कहेंगे ब्रह्मणि प्रपंचो नास्ति, ब्रह्म में कोई प्रपंच नहीं है, तो इसी का नाम क्या होगा, अपवाद। अब ये क्यों होता है, किस वजह से था, तो माया की व्युत्पत्ति किया। माया शब्द कैसे बनता है, तो लिखा है या मा सा माया, या मतलब जो और मा मतलब नहीं, जो नहीं है उसी का नाम क्या है, ना होकर के भी होने की जो प्रतीति करा देवे, इसी का नाम है माया। अच्छा, इसको हिंदी में बोलेंगे तो जो नहीं है वह माया है, जो नहीं है वह माया है, लेकिन जो है ही नहीं, हाँ, जो है ही नहीं उसका नाम है अविद्या। माया और अविद्या में क्या भेद है, तो इतने को लेकर भेद कर दिया। या मा सा माया, मतलब जो नहीं है वह तो माया है, लेकिन या न विद्यते सा अविद्या, हाँ, जो है ही नहीं उसका नाम है अविद्या। इस व्युत्पत्ति के अनुसार माया जो है कल्पितत्व है, अर्थात माया की कल्पना की गई है, माया नाम की कोई चीज है नहीं, कल्पना मात्र है। जैसे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में आता है, माया बीव विजृंब यद्यपि महा योगी वयः स्वेच्छया। जैसे योगी अथवा जादूगर ऐन्द्रजालिक, इंद्रजाल के द्वारा, माया के द्वारा अनेक वस्तुओं को उत्पन्न करके दिखा देता है, ऐसे वह परमेश्वर भी अपने अनंत शक्ति के द्वारा, पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते, परमेश्वर की जो शक्ति है उससे ये अनंत रूप में दिखने वाले जगत को हम लोग देख करके मोहित हो जाते हैं और समझ में नहीं आता कि ये है क्या चीज। जब अपने स्वरूप का ज्ञान होता है तब मालूम पड़ता है कि ये सारी चीजों की कल्पना हमारे अपने अंदर ही हो रही है। संसार क्या है, काल्पनिक है, और वास्तविक क्या है, परमार्थ सत्ता। तो या मा सा माया, या न विद्यते सा अविद्या, इति व्युत्पत्त्या मायाया कल्पितत्वं सिद्धम्। एवं यह, इस प्रकार से जो ब्रह्म व्यतिरेकेण किमपि नास्ति, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और वह ब्रह्म मैं ही हूं, इस प्रकार का निश्चय जब हो जाए, क्या बोलना है आपसे, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और वह ब्रह्म मैं ही हूं, इति विचार्य जानाति। जब ऐसा विचार करके जो जानता है, बिना विचारे नहीं बोलना है, पूरा चिंतन किया, सोच समझ करके देख लिया, क्योंकि अगला जो प्रकरण प्रारंभ होने वाला है वह और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसे ब्राह्मण कौन सा कर्म करे, क्षत्रिय कौन सा कर्म करे, जैसे कर्मों का विधान तत्त्व वर्णों के लिए निश्चित किया गया, वैसे ही वेदांत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति कौन होवे, उस व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, अनुबंध चतुष्टय पूर्वक ही वेदांत शास्त्र में प्रवेश कर सकता है। इसलिए अनुबंध चतुष्टय का कितना महत्व है आप अगले प्रकरण में सुनेंगे। उससे पहले इस प्रथम वर्णक में बता दिया कि वेदांत का जो सिद्धांत है वो क्या है, क्योंकि सिद्धांत बता देने के बाद अब इसको हमें प्राप्त करने की इच्छा होगी कि कैसे हमें जीवन मुक्त होना है, कैसे अपने अज्ञान आदि से निवृत्त होना है, जो सात अवस्थाएं बताई है, तो निरंकुशा तृप्ति की प्राप्ति होने से पहले जितने भी ये अज्ञान, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान और शोक हति, छह चीजों के पार करने के बाद जो सातवीं स्थिति है और वह है निरंकुशा तृप्ति अर्थात परमानंद की प्राप्ति, यही जीवन मुक्त का स्वरूप है। जीवन मुक्त का कैसा भाव होगा तो कहेगा ब्रह्म व्यतिरेकेण किमपि नास्ति। व्यतिरेक का मतलब अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और वह ब्रह्म मैं ही हूं। तद ब्रह्मा अहम एव इति विचार य जानाति स एव जीवन मुक्त इति वेदांत सिद्धांत। जैसे सात दिनों तक, ये सप्ताह का मतलब क्या है? सबसे पहले सप्ताह किसने सुना था? कल आप लोगों को थोड़ी सी बात बताई थी, ब्रह्मा जी जब सृष्टि बनाने चले तो नर एव नार, नारायण, नारायण आदि पुरुष हैं जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो कहने लगे कि जब मैं सृष्टि बनाऊंगा तो उस समय रजोगुण की अधिकता होने के कारण कहीं न कहीं अभिमान आ सकता है और उस अज्ञान में न पढ़ूं, उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? भगवान नारायण ने कहा कि तुम लगातार भागवत श्रवण करो। अब लगातार कब तक करेंगे? इसी के लिए ये सात आवरण का प्रतीक ही है, सात दिन। सातों आवरण को भंग करने के लिए आठवां आवरण है नहीं, इसलिए आठवां कोई दिन भी नहीं है। सात दिनों में सात आवरण भंग हो जाते हैं, चाहे वो धुंधकारी की मुक्ति के बाद हो तो बांस की गांठें खुल गई, वो एक अलग नाम रख दिया। यहां पर हम लोगों के जीवन में भी चाहे सौ साल जीते तो है, लेकिन सातवां दिन का ही चक्कर चलता है पूरा, संडे टू संडे, संडे मंडे वही चलता है, कोई आठवां दिन तो है नहीं। तो सात आवरणों को भंग करने के लिए ये सात दिन ब्रह्मा जी ने निर्धारित किया। इसका मतलब हुआ कि वो निरंतर ही भागवत श्रवण करते हैं, सृष्टि बनाते हुए और भागवत का चिंतन करते रहते हैं, ये तो ब्रह्मा जी के लिए हो गया। अब विष्णु जो सत्गुणी हैं, लेकिन उनको भी पालन करने का कार्य जो सौंपा, तो कल आप लोगों को बता ही दिया था, वो एक महीने में कर लेते थे काम, और जब लक्ष्मी जी सुनाती थी तो दो महीने लगाती थी। शंकर जी जो रुद्र के रूप है, संहार शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक साल तक लगातार भागवत श्रवण करते हैं शंकर जी, तब जाकर के उन्हें संहार करने के बाद कोई अभिमान नहीं होता। तो सात दिन, एक महीना, दो महीना और एक साल, ये सब स्कंद पुराण में आया है। तो जब परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुना दी, उसके बाद परीक्षित क्या बोलते हैं कि एक तक्षक की बात क्या है, अर्थात एक मौत क्या, हजारों मृत्यु आकर के इकट्ठे आ जाए सामने तब भी मुझे कोई डर लगने वाला नहीं। और हम लोगों का भी क्या होता है, एक मौत से तो बच जाते हैं लेकिन दूसरे मौत का भय रहता है। जैसे एक बीमारी ठीक हुई तो फिर क्या डर रहता है, कोई दूसरी बीमारी ना लग जाए। आज का दिन तो कट गया, कल का कटेगा कि नहीं कटेगा? तो ये जो दिन रात भय से युक्त है हम लोग, अब वह परीक्षित बोलते हैं कि मैं समस्त भयों से मुक्त हो गया। एक तक्षक तो एक बार काटेगा, वो तो मौत है ही सबकी, लेकिन ये जो हम लोग रोज रोज जो मर रहे हैं, किसी के बाप से दुखी होते हैं, किसी के अपमान से दुखी होते हैं, कभी कहीं आना जाना पड़े तो दुखी होते हैं, ये जो बार बार मर रहे हैं ना, ऐसे समस्त मृत्युओं से मैं अब छूट गया, ऐसा परीक्षित के अपने मुंह से सुनाया हुआ है। क्योंकि जब भागवत का सप्ताह आदि कथा चलती है ना, तो वक्ता भी जल्दी जल्दी में हो जाते हैं, बस सात दिनों में लगभग कुछ कुछ विषयों को छूना भी है, श्रोता बोर ना हो जाए, थोड़ा कीर्तन भजन भी रखना है, तो कथा पीछे रह जाती है। और इसलिए ग्यारहवें बारहवें स्कंद की कथा तो ना के बराबर ही होती है, ग्यारहवें स्कंद में भी मुख्य मुख्य प्रकरण ले लिया, अवधूत उपाख्यान, नौ योगेश्वरों का संवाद, ये सब तो ले लेते हैं। बारहवें स्कंद की कथा कभी कोई नहीं पूरी कर पाते, और बारहवें स्कंद की कथा सुनो तो पूरे ग्यारहवें स्कंद तक की कथा समझ में आ जाती है। तो ये सब क्योंकि अंतिम में परीक्षित का जो संवाद हुआ है सुखदेव जी के साथ, वो जब तक नहीं सुनोगे ना मालूम नहीं पड़ता है कि भागवत का लक्ष्य क्या है। अभी उधर भागवत तत्व के ऊपर विचार रखा था, तो ये जब श्रवण करो तब मालूम पड़ता है। तो ये जीवन मुक्ति की बात आप लोगों ने श्रवण किया प्रथम वर्णक के माध्यम से, अब आगे दूसरे वर्णक प्रारंभ करेंगे, वो कल से चलेगा। ओम।